सांख्य दर्शन का ये तीसरा टॉपिक है प्रमाण विचार। सांख्य का ज्ञान विषयक सिद्धांत मुख्यतः उसके द्वैतवाद पर अवलंबित है। सांख्य केवल तीन प्रमाण यथार्थ ज्ञान के साधन मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। अन्य अन्य प्रमाण जैसे उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि स्वतंत्र प्रमाण नहीं माने गए हैं, उनको इन्हीं तीनों के अंतर्गत सन्निविष्ट कर लिया है। किसी विषय के यथार्थ निश्चित ज्ञान अर्थ परिच्छेद को प्रमा कहते हैं। जब आत्मा चैतन्य बुद्धि में प्रतिबिंबित होती है तब ज्ञान का उदय होता है। सांख्य दर्शन में बुद्धि को भी जड़ तत्व माना गया है। चैतन्य केवल आत्मा अर्थात पुरुष का धर्म है, किंतु आत्मा को स्वतः विषयों का साक्षात्कार नहीं होता। यदि ऐसा होता तो हमें सर्वदा सब विषयों का ज्ञान रहता, क्योंकि जो आत्मा हम में है वह किसी स्थान विशेष में नहीं किंतु सर्वव्यापी है। आत्मा को बुद्धि, मन और इंद्रियों के सहारे विषयों का ज्ञान होता है। जब इंद्रियों और मन के व्यापार से विषयों का आकार बुद्धि पर अंकित हो जाता है और बुद्धि पर आत्मा के चैतन्य का प्रकाश पड़ता है, तब हमें उन विषयों का ज्ञान होता है। प्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति तीन वस्तुओं पर निर्भर होती है। पहला प्रमाता अर्थात जानने वाला पुरुष, दूसरा प्रमेय अर्थात वह विषय जो जाना जाता है, और तीसरा प्रमाण अर्थात वह साधन जिसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। शुद्ध चेतन पुरुष ही प्रमाता या ज्ञाता होता है। बुद्धि की वृत्ति को जिसके द्वारा पुरुष को विषय का ज्ञान होता है उसे प्रमाण कहते हैं। इस वृत्ति के द्वारा जिस विषय का ज्ञान पुरुष को होता है उसे प्रमेय कहते हैं। विषयाकारक बुद्धि में आत्मा का प्रकाश पड़ना ही प्रमा अर्थात ज्ञान है। चैतन्य के प्रकाश बिना जड़ बुद्धि में किसी विषय का ज्ञान नहीं हो सकता। किसी विषय का इंद्रिय के साथ संयोग होने में जो साक्षात ज्ञान होता है वह प्रत्यक्ष कहलाता है। जब कोई विषय जैसे वृक्ष दृष्टि पथ में आता है तब वृक्ष का हमारे दर्शनेन्द्रिय अर्थात आँख के साथ संयोग होता है। उस विषय अर्थात वृक्ष के कारण हमारे नेत्रेन्द्रिय पर विशेष प्रकार का प्रभाव पड़ता है, जिसका विश्लेषण और संश्लेषण मन करता है। इंद्रिय और मन के व्यापार से बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है और वह विषय का आकार ग्रहण करती है, परंतु विषय का आकार धारण करने पर भी बुद्धि को स्वतः उस विषय का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वह बुद्धि जड़ तत्व है, परंतु उसमें अर्थात बुद्धि में सत्व गुण का आधिक्य रहता है, जिसके कारण वह दर्पण की तरह पुरुष के चैतन्य को प्रतिबिंबित करती है। पुरुष का चैतन्य उसमें प्रतिबिंबित होने पर बुद्धि की अचेतन वृत्ति अर्थात वृक्ष रूपी वृत्ति उद्भासित हो उठती है और वह प्रकाशित हो प्रत्यक्ष ज्ञान के रूप में परिणित हो जाती है। जिस प्रकार निर्मल दर्पण में दीपक के प्रकाश का प्रतिबिंब पड़ता है और उससे अन्य अन्य वस्तुएं भी आलोकित हो जाती हैं, उसी प्रकार सात्विक बुद्धि में पुरुष के चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है और उससे विषयों का प्रकाश या ज्ञान हो जाता है। उपर्युक्त प्रतिबिंबवाद की व्याख्या दो प्रकार से की गई है, एक वाचस्पति मिश्र का मत है, दूसरा विज्ञान भिक्षु का। ऊपर वाचस्पति मिश्र का मत दिया गया है। वाचस्पति मिश्र का कहना है कि जब विषयाकारक बुद्धि पर चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ता है तब विषय का ज्ञान होता है। विज्ञान भिक्षु के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान इस प्रकार होता है, जब कोई विषय इंद्रिय के संपर्क में आता है तब बुद्धि विषय का आकार ग्रहण करती है, तब उसमें अर्थात बुद्धि सत्व गुण का आधिक्य रहने के कारण चेतन पुरुष का प्रतिबिंब उस पर पड़ता है, जिससे उसमें भी चैतन्य का आभास हो जाता है। जैसे दीपक में प्रकाश का प्रतिबिंब पड़ने से वह स्वयं आलोकित होकर औरों को भी आलोकित करता है, ततः पर वह विषयाकारक बुद्धि आत्मा में प्रतिबिंबित होती है। अर्थात बुद्धि की विषयाकारक वृत्ति के द्वारा आत्मा को विषय का साक्षात्कार होता है। वाचस्पति मिश्र के मत से बुद्धि में आत्मा प्रतिबिंबित होती है, किंतु आत्मा में बुद्धि प्रतिबिंबित नहीं होती। विज्ञान भिक्षु के मत में दोनों का प्रतिबिंब एक दूसरे पर पड़ता है। योग सूत्र की वेद व्यासी टीका में भी इसी मत का अनुमोदन किया गया है। विज्ञान भिक्षु आत्मा में बुद्धि का प्रतिबिंब होना इसीलिए मानते हैं कि इससे आत्मा के सुख दुखादि अनुभव की व्याख्या हो जाती है। अन्यथा शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा को जो सभी विकारों से रहित है, सुख दुख का अनुभव नहीं हो सकता। बुद्धि को ही ये अनुभव हो सकते हैं। इसलिए पुरुषों के प्रत्यक्ष सिद्ध सुख दुखादि अनुभवों के उपादान के लिए पारस्परिक प्रतिबिंबवाद का आश्रय लिया गया है। प्रत्यक्ष दो प्रकार के होते हैं, निर्विकल्प और सविकल्प। जिस क्षण में इंद्रिय के साथ विषय का संयोग होता है, उस क्षण में जो विषय का आलोचन होता है उसे निर्विकल्प कहते हैं। यह मानसिक विश्लेषण संश्लेषण से पूर्व की अवस्था है। इसमें केवल विषय की प्रतीति मात्र होती है, विषय की प्रकारकता का ज्ञान नहीं होता। यह अनुभव शब्द द्वारा व्यक्त नहीं हो सकता। जैसे शिशु या मूक व्यक्ति अपना अनुभव शब्द द्वारा प्रकट नहीं कर सकता, उसी तरह हम निर्विकल्प प्रत्यक्ष का अनुभव शब्द द्वारा दूसरों को नहीं जना सकते। दूसरे प्रकार का प्रत्यक्ष अनुभव वह है जिसमें विषय का मन के द्वारा विश्लेषण संश्लेषण और रूप निर्धारण होता है। इसे सविकल्प प्रत्यक्ष कहते हैं। यह विषय इस प्रकार का है, इसमें अमुक गुण है, इसका अमुक विषय से यह संबंध है, इस प्रकार की विवेचना इस प्रत्यक्ष में होती है। किसी विषय का सविकल्प प्रत्यक्ष उद्देश्य विधेय युक्त वाक्य द्वारा प्रकट किया जाता है। जैसे यह गौ है, वह फूल लाल है। न्याय दर्शन में अनुमान का जो प्रकार भेद किया गया है, वही कुछ हेर फेर के साथ सांख्य भी मानता है। अनुमान पहले दो प्रकारों में विभक्त किया जाता है, वीत और अवीत। जो अनुमान व्यापक विधि वाक्य यानी यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रोपोजिशन पर अवलंबित रहता है वह वीत, और जो व्यापक निषेध वाक्य यानी यूनिवर्सल निगेटिव प्रीपोजिशन पर अवलंबित रहता है वह अवीत कहलाता है। वीत के दो प्रकार माने गए हैं, पूर्ववत और सामान्यतो दृष्ट। पूर्ववत अनुमान वह है जो वस्तुओं के बीच दृष्ट व्याप्ति संबंध पर अवलंबित है। जैसे हम धुआं देखकर आग का अनुमान करते हैं, क्योंकि धुएं और आग में नित्य साहचर्य का संबंध पाया जाता है। सामान्यतो दृष्ट अनुमान उसे कहते हैं जहाँ लिंग और साध्य के बीच व्याप्ति संबंध नहीं देखा गया है, किंतु लिंग का सादृश्य उन वस्तुओं से है जिनका साध्य के साथ नियत संबंध है। जैसे हमें इंद्रियां हैं, इस बात को हम कैसे जानते हैं? प्रत्यक्ष के द्वारा हम जान नहीं सकते, क्योंकि इंद्रिय अगोचर हैं। आंख सब कुछ देखती है, परंतु आंख को देखने के लिए हमारे पास कोई इंद्रिय नहीं है। अंगुली कपूर स्वयं अपना स्पर्श नहीं कर सकता। अतएव इंद्रियों के अस्तित्व का ज्ञान हमें इस प्रकार अनुमान के द्वारा होता है। सभी कार्य किसी न किसी साधन द्वारा संपादित होते हैं। जैसे पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ती है, किसी रूप या गंध का अनुभव भी एक कार्य है। अतः इसके लिए भी कोई साधन या कारण अर्थात इंद्रियां होनी चाहिए। यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि हमें इंद्रियों के अस्तित्व का अनुमान प्रत्यक्ष की क्रिया से इसीलिए नहीं करते कि उन दोनों में अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान और इंद्रिय में व्याप्ति का संबंध देखा गया है, परंतु इसलिए करते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान एक क्रिया है और प्रत्येक क्रिया के लिए एक साधन की जरूरत पड़ती है। दूसरे प्रकार का अनुमान है अवीत, जिसे कुछ न्यायिक शेषवत या परिशेष अनुमान कहते हैं। जब कभी विकल्पों को छांटते छांटते अंत में एक ही शेष बच जाता है, तब वही सत्य प्रमाणित होता है। जैसे शब्द, द्रव्य, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय या अभाव नहीं हो सकता, अतः शब्द गुण है। इस प्रकार का अनुमान अवीत या शेषवत कहलाता है। न्यायिकों की तरह सांख्य भी पंचावयव वाक्य को अनुमान का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ, प्रमाणिक स्वरूप मानते हैं। तीसरा प्रमाण है जिस विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा नहीं होता, उसका ज्ञान आप्तवचन के द्वारा होता है। विश्वस्त वाक्य को आप्तवचन कहते हैं। वाक्य का अर्थ है शब्दों का एक विशेष क्रम से विन्यास। शब्द किसी वस्तु का वाचक होता है। वाक्य विषय ही शब्द का अर्थ है, अर्थात शब्द वह संकेत है जो किसी वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है। वाक्य बोध होने के लिए शब्द बोध होना आवश्यक है। शब्द दो प्रकार का होता है, लौकिक और वैदिक। साधारण विश्वास पात्र व्यक्तियों के आप्तवचन को लौकिक शब्द कहते हैं। सांख्य इसे स्वतंत्र प्रमाण की कोटि में नहीं रखता, क्योंकि यह प्रत्यक्ष और अनुमान पर आश्रित है। श्रुति या वेद का वाक्य ही शब्द प्रमाण की कोटि में आता है। वैदिक वाक्य हमें उन अगोचर विषयों का ज्ञान कराते हैं जो प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा नहीं जाने जा सकते। अपौरुषेय होने के कारण वेद उन सभी दोषों और त्रुटियों से रहित है जो लौकिक वाक्यों में हो सकती है। वैदिक वाक्य अभ्रांत और स्वतः प्रमाण है। वे दृष्टा ऋषियों के साक्षात अनुमान या इंस्टीट्यूशंस हैं। यह अनुभव किसी व्यक्ति विशेष के ज्ञान या इच्छा पर आश्रित नहीं, किंतु सर्वदेशीय और सर्वकालिक सत्य है। इस तरह वेद अपौरुषेय हैं, फिर भी वे नित्य नहीं माने जा सकते, क्योंकि वे दृष्टा ऋषियों के दिव्य अनुभवों से उत्पन्न होते हैं और सनातन पठन पाठन की परंपरा से सुरक्षित रहते हैं। सांख्य दर्शन का चौथा टॉपिक है मोक्ष या कैवल्य। मोक्ष व कैवल्य। हमारा सांसारिक जीवन सुख दुख से भरा होता है। जीवन में निसंदेह नाना प्रकार के आनंद भी हैं और बहुत से लोग उनका भोग भी करते हैं, परंतु दुख कष्टों की मात्रा और भी कहीं अधिक है और संसार के सभी जीवों को उनका भोग करना पड़ता है। यदि किसी जीव के लिए दुख क्लेशों से त्राण पाना संभव भी हो तो जरा अर्थात बुढ़ापा और मृत्यु के चंगुल से छुटकारा पाना उनके लिए असंभव है। साधारणतः तीन प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। आध्यात्मिक दुख उसे कहते हैं जो जीव के अपने शरीर या मन आदि से उत्पन्न होता है। शारीरिक और मानसिक आदि व्याधियों जैसे रोग, क्षुधा, क्रोध, संताप आदि आध्यात्मिक दुख हैं। आदि भौतिक दुख वह हैं जो बाह्य भौतिक पदार्थ के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे कांटा गड़ना, लाठी की चोट, बिच्छू का डंक। आधिदैविक दुख वह हैं जो बाह्य आलोकिक कारण से उत्पन्न होते हैं, जैसे भूत प्रेत आदि का उपद्रव। सभी मनुष्य दुख से बचना चाहते हैं, बल्कि सबकी यही इच्छा रहती है कि सदा के लिए सब दुखों का अंत हो जाए और सर्वदा आनंद बना रहे, परंतु ऐसा होने का नहीं। किसी को केवल आनंद ही नहीं मिल सकता, सभी दुखों से एक बार की छुटकारा पा जाना असंभव है। जब तक यह नश्वर शरीर है, जब तक वे दुर्बल इंद्रियां हैं, तब तक सभी सुखों का दुख मिश्रित होना अर्थात छादित होना अवश्यंभावी है। इसलिए हमें चाहिए कि सुखवाद यानी हेडोनिज्म का आदर्श अर्थात आनंद भोग परित्याग कर उससे कम आकर्षक परंतु अधिक युक्तिसंगत ध्येय दुखों की निवृत्ति से ही संतोष करें। यही दुखों का अत्यंत निवृत्ति, सभी दुखों का सर्वदा के लिए निवारण, जिससे दुख की कभी पुनरावृत्ति नहीं हो सके, मुक्ति अपवर्ग या पुरुषार्थ कहलाती है। सभी दुख क्लेशों से मुक्ति पाने का मार्ग क्या है? मानव बुद्धि के द्वारा जितने कला विज्ञानों का विकास हुआ है और उनसे जीवन की जो सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, वे क्षणिक आनंद देने वाली अथवा दुख का कुछ ही काल तक निवारण करने वाली होती हैं। उनसे समस्त शारीरिक मानसिक कष्टों का सर्वदा के लिए अंत नहीं हो जाता। भारतीय दर्शनकार इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए सबसे उत्तम उपाय ढूंढ निकालते हैं, वह है तत्वज्ञान। हमारे सभी दुख अज्ञान के कारण होते हैं। जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हम देखते हैं कि अज्ञानी या मूर्ख व्यक्ति इसलिए दुख पाता है कि वह बारंबार जीवन और प्रकृति के नियमों से अनभिज्ञ रहता है। जितना ही अपने विषय में अथवा इस संसार के विषय में हमें ज्ञात होता है, उतना ही जीवन संग्राम और सुख भोग के लिए हम में अधिक योग्यता आती है। परंतु तथापि हम कभी पूर्णतः सुखी या कम से कम दुखों से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकते। इसका कारण है कि हमें तत्व का ज्ञान नहीं रहता। जब हमें यथार्थ तत्व का ज्ञान हो जाता है, तब हम सभी दुखों से मुक्ति पा जाते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार दो ही प्रकार की वास्तविक सत्ताएं हैं, एक चेतन पुरुष और दूसरा उसके विषय भूत जड़ पदार्थ। पुरुष शुद्ध चैतन्य स्वरूप है जो देश, काल और कारण के बंधनों से रहित है। वह निर्गुण और निष्क्रिय होता है। वह ज्ञाता मात्र है जो बुद्धि, अहंकार, मन, इंद्रिय, शरीर आदि समस्त विषयों के संसार से परे है। जितनी भी क्रियाएं या परिवर्तन होते हैं, जितने भी भाव या विचार उठते हैं, जितने भी सुख दुख होते हैं, वे मनोयुक्त शरीर में होते हैं। पुरुष या आत्मा इन मनोभूत शरीर से बिल्कुल पृथक है। यह सभी शारीरिक मानसिक विकारों से निर्लिप्त रहता है। सुख दुख इसे व्याप्त नहीं होते, वे मन के अनुभव हैं। सुख या दुखी होने वाला मन है, आत्मा नहीं। इसी तरह पुण्य धर्म और अधर्म आदि अहंकार के गुण हैं, जो सभी कार्यों के प्रवर्तक या कर्ता हैं। यह सत्कर्म या असत्कर्म की ओर प्रवृत्त होता है और कर्मानुसार सुख दुख का भोग करता है। आत्मा या पुरुष इस अहंकार से भिन्न है। इस प्रकार आत्मा या पुरुष सांसारिक विषयों से परे है, शुद्ध चैतन्य या ज्ञान, नित्य अविनाशी और मुक्त है। यह एक रस ज्ञान स्वरूप होता है। परिवर्तनशील मनोविकार मन के धर्म है, आत्मा के नहीं। आत्मा शारीरिक और मानसिक क्रियाओं का केवल साक्षी मात्र है। यह दोनों से भिन्न है। यह दैनिक कालिक बंधनों और कारण कार्य श्रृंखला से भी मुक्त है। यह नित्य या अमर है, क्योंकि इसकी न तो उत्पत्ति ही होती है और न कभी विनाश होता है। सुख और दुख वस्तुतः बुद्धि या मन को होते हैं। स्वभाव आत्मा का ऐसा है कि वह इन सबों से मुक्त रहता है, किंतु अज्ञान के कारण वह बुद्धि या मन से अपना पार्थक्य नहीं समझता और उन्हें अपना ही अंग समझने लगता है। यहाँ तक कि यह अपने को ही शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि समझने लग जाता है। दूसरे शब्दों में यह कहिए कि यह विशिष्ट बुद्धि स्वभाव युक्त विशिष्ट नाम रूपधारी व्यक्ति बन जाता है। इस तरह आत्मा शारीरिक, सामाजिक आदि रूपों में प्रतीत होती है। सांख्य मत के अनुसार ये अनात्म विषय आत्मा से भिन्न पदार्थ हैं, जो आत्मा के चैतन्य से उद्भाषित होते हैं और उसमें अर्थात आत्म में अपने विकार या भाव आरोपित करते हैं। बुद्धि में सुख या दुख का आविर्भाव होने पर आत्मा को ऐसा भान होता है कि इसे ही सुख या दुख हो रहा है, क्योंकि वह बुद्धि से अपने को अभिन्न समझता है। उसी तरह जैसे प्रिय संतान के सुखी या दुखी होने पर पिता अपने को ही सुखी या दुखी समझता है, अथवा अपने सेवक के अपमान से स्वामी अपना अपमान समझते हैं। यही अविवेक आत्मा का शरीर से पार्थक्य ज्ञान का अभाव सारे अनर्थों की जड़ है। हम सुख दुख इसलिए भोगते हैं कि दृष्टा अपने को अर्थात पुरुष अपने को दृश्य अर्थात प्रकृत समझ लेता है और इस तरह सुख दुख का आधार अपने को मानने लगता है। आत्मा और अनात्म विषय में भेद के ज्ञान का अभाव अर्थात अविवेक ही समस्त दुखों का मूल कारण है। इस भेद के ज्ञान अर्थात विवेक ज्ञान से ही दुखों की निवृत्ति या मोक्ष संभव है, परंतु केवल इस बात को मन में समझ लेना तत्व ज्ञान नहीं कहलाता। इस सत्य की साक्षात अनुभूति होनी चाहिए कि आत्मा में शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि से भिन्न है। एक बार जब इस सत्य का साक्षात्कार हो जाता है कि हम में जो आत्मा है वह अनादि और अमर है, नित्य, अविनाशी, चैतन्य या ज्ञान स्वरूप है, तब हम सभी क्लेशों से मुक्त हो जाते हैं। यह जो भ्रम है कि यह शरीर या मन ही मैं हूँ, इसे दूर करने के लिए सत्य का साक्षात अनुभव होना जरूरी है। मैं अपने को एक विशिष्ट मनोयुक्त देह समझ रहा हूँ, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं होता। यह प्रत्यक्ष सिद्ध जान पड़ता है। इसी तरह मैं यह देह, मन, इंद्रिय आदि युक्त नहीं हूँ, यह ज्ञान भी उतना ही प्रत्यक्ष और निसंदेह होना चाहिए, तभी वह भ्रम दूर हो सकता है। रस्सी में सांप का जो भ्रम होता है वह किसी युक्ति या उपदेश से दूर नहीं होता। रस्सी का यथार्थ प्रत्यक्ष ज्ञान ही उसे काट सकता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ी साधना की आवश्यकता है। उसके लिए इस सत्य का निरंतर मनन और निधिध्यासन चाहिए कि आत्मा शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि नहीं। इस साधना का क्या रूप है और कैसे अभ्यास करने चाहिए, इसकी विवेचना योग दर्शन में की जाएगी। जब आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है तो उसमें कोई विकार नहीं आता, न उसमें किसी नवीन गुण या धर्म का आविर्भाव होता है। मोक्ष या कैवल्य का अर्थ किसी अवस्था से पूर्ण अवस्था पर पहुंचना नहीं है। इसी तरह अमरत्व या नित्यत्व को सामयिक घटना समझना भूल है। यदि यह विशेष घटना होती तो देश काल और कार्यकारण की श्रृंखला में बंधी होती और तब आत्मा न मुक्ति ही कही जा सकती और न नित्य ही। मुक्त या मोक्ष का अर्थ है इस तत्व का साक्षात्कार कि आत्मा देश काल से परे, शरीर और मन से भिन्न और स्वभावतः मुक्त, नित्य और अमर है। जब ऐसी अनुभूति होती है तब आत्मा का शरीर या मन के विकारों से प्रभावित होना बंद हो जाता है और वह केवल उनका साक्षी रूप होकर रह जाता है। जिस प्रकार नर्तकी अर्थात नाच करने वाली दर्शकों की अपना नृत्य दिखाकर उन्हें संतुष्ट कर अपने नित्य से विरत होती है, उसी तरह प्रकृति अपने भिन्न भिन्न रूप पुरुष को दिखलाकर सृष्टि कार्य से विरत होती है। प्रत्येक पुरुष के लिए इसी जीवन में अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान और उसके द्वारा मुक्ति पाना संभव है। ऐसी मुक्ति को जीवन मुक्ति कहते हैं। मृत्यु के अंदर जो देह से भी मुक्ति होती है उसे विदेह मुक्ति कहते हैं। इस अवस्था में स्थूल सूक्ष्म सभी शरीरों से संबंध छूट जाता है और पूर्ण कैवल्य प्राप्त हो जाता है। विज्ञान भिक्षु का मत है कि विदेह मुक्ति की वास्तविक है, क्योंकि जब तक आत्मा शरीर में अवस्थित रहती है तब तक शारीरिक और मानसिक विकारों से उसका संबंध पूर्णतः विच्छिन्न नहीं हो सकता। इस बात में सभी सांख्यों का एक मत है कि मुक्ति का अर्थ है दुख त्रयाभिघात अर्थात तीनों प्रकार के दुखों का समूल नाश। वेदांत मोक्ष को अवस्था का आनंदमय मानता है। सांख्य इस बात को स्वीकार नहीं करता। जहां कोई दुख नहीं है वहां कोई सुख भी नहीं हो सकता, क्योंकि वे दोनों सापेक्ष और अविच्छेद हैं। सांख्य दर्शन का पांचवा टॉपिक है ईश्वर। ईश्वर को लेकर सांख्य के अनुयायियों में कुछ वाद विवाद हैं। उनमें अधिकांश तो ईश्वरवाद का स्पष्टतः खंडन करते हैं, किंतु कुछ यह दिखलाने की चेष्टा करते हैं कि सांख्य न्याय से कम आस्तिक नहीं है। सनातन सांख्य मतावलंबी ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध निम्नलिखित युक्तियां देते हैं। पहला, यह संसार कार्य कारण श्रृंखला है, अतः इसका कारण होना चाहिए। इसमें तो कोई संदेह नहीं, परंतु वह कारण ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर की नित्य निर्विकार अपरिणामी परमात्मा माना गया है और जो परिणामी अर्थात परिवर्तनशील नहीं है वह किसी वस्तु का निमित्त कारण नहीं हो सकता अर्थात किसी क्रिया का प्रवर्तक नहीं हो सकता। अतएव यह सिद्धांत निकलता है कि जगत का मूल कारण नित्य किंतु परिणामी परिवर्तनशील है। यही नित्य परिणामी कारण प्रकृति है। दूसरा, यहाँ कहा जा सकता है कि प्रकृति तो जड़ है, इसकी गति को निरूपित और नियमित करने के लिए चेतन सत्ता आवश्यक है जो सृष्टि उत्पन्न करती है। जीवात्माओं का ज्ञान सीमित रहता है, इसीलिए जगत के सूक्ष्म उपादान कारण को नियंत्रित नहीं कर सकते। अतएव एक अनंत बुद्धि युक्त चेतन सत्ता होनी चाहिए जो प्रकृति का संचालन कर सके, इसी का नाम ईश्वर है। परंतु ऐसा तर्क समचीन नहीं है। ईश्वरवादियों के मत में ईश्वर कुछ करता नहीं, वह किसी क्रिया में प्रवृत्त नहीं होता, परंतु प्रकृति का संचालन या नियमन करना तो एक क्रिया है। मान लीजिए ईश्वर प्रकृति का नियामक है, तब प्रश्न उठता है ईश्वर के प्रकृति के संचालन द्वारा सृष्टि रचना में क्यों प्रवृत्त होता है? उसका कोई अपना उद्देश्य तो नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण परमात्मा में कोई अपूर्ण इच्छा या अतृप्त मनोरथ रहना असंभव है। यदि यह कहा जाए कि ईश्वर का प्रयोजन अन्य जीवों की उद्देश्य पूर्ति है, तो शंका उठती है कि बिना अपने प्रयोजन अन्य जीवों की उद्देश्य पूर्ति किसी स्वार्थ के कोई भी व्यक्ति दूसरे की उद्देश्य सिद्धि के लिए तत्पर नहीं होता। और वास्तव में देखा जाए तो यह सांसारिक इतने पापों और कष्टों से भरा है कि यह कहना असंगत प्रतीत होता है कि ईश्वर ने जीवों के हित साधनार्थ इस सृष्टि की रचना की है। तीसरा, यदि ईश्वर में विश्वास किया जाए तो जीवों का स्वातंत्र और अमरत्व बाधित अर्थात खंडित हो जाता है। यदि जीवों को ईश्वर का अंत माना जाए तो उसमें ईश्वरीय शक्ति रहनी चाहिए जो बात देखने में नहीं आती। इसके विपरीत यदि उन्हें ईश्वर के द्वारा सृष्ट अर्थात उत्पन्न माना जाए तो फिर उनका नश्वर होना सिद्ध होता है। इन सब बातों से सिद्ध होता है कि ईश्वर नहीं है और प्रकृति ही संसार का मूल कारण है। प्रकृति अज्ञात रूप से स्वभावतः पुरुषों के कल्याणार्थ कल्याणार्थ उसी तरह सृष्टि रचना करती है जिस तरह बछड़े की सृष्टि के निमित्त गाय के थन से स्वतः दूध की धारा बहती है। सांख्य के कुछ टीकाकार ऐसे भी हैं जो सांख्य को ईश्वरवादी सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इनमें विज्ञान भिक्षु प्रमुख हैं। कुछ आधुनिक सांख्य मतानुयायी भी इसी मत का समर्थन करते हैं। इन लोगों का कहना है कि सृष्टि क्रिया के प्रवर्तक रूप में तो ईश्वर को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु तथापि हमें ऐसे ईश्वर को मानना आवश्यक है जिनकी सन्निधि अर्थात समीपता से ही प्रकृति की क्रिया शक्ति प्रवर्तित हो जाती है। जिस प्रकार चुंबक के समीप लोहे में गति आ जाती है, ऐसा ईश्वर अपने में पूर्ण और नित्य साक्षी स्वरूप है। विज्ञान भिक्षु के मतानुसार ऐसे ईश्वर की सिद्धि युक्ति और शास्त्र दोनों से होती है। सांख्य की यह ईश्वरवादी व्याख्या अधिक प्रचलित नहीं है। सांख्य दर्शन का 6वां टॉपिक है उपसंहार। ये इसका अंतिम भाग है। सांख्य दर्शन वस्तुवाद रियलिज्म और द्वितत्ववाद ड्यूअलिज्म का प्रतिपादन करता है। यह प्रकृति और पुरुष इन दो तत्वों के सहारे जगत को उत्पादन करता है। सारा संसार इन्हीं दो का खेल है। एक तरफ प्रकृति है जो भौतिक संसार अर्थात विषय इंद्रिय शरीर मन बुद्धि अहंकार इन सब के समूह का मूल कारण है। यह प्रकृति संसार का उपादान कारण भी और निमित्त कारण भी है। यह सक्रिय और निरंतर परिवर्तनशील होती है, परंतु साथ ही यह अचेतन या जड़ है। इस तरह के अचेतन तत्व से नियंत्रित श्रृंखलापूर्ण जगत का विकास कैसे होता है, वह निश्चित ध्येय की तरफ कैसे बढ़ता है। जब आदि में प्रकृति साम्यावस्था में थी, तब फिर पहले पहल उसमें विकार या क्षोभ क्यों उत्पन्न हुआ। इसके निमित्त सांख्य दूसरे तत्व का आश्रय लेता है, पुरुष या आत्मा। पुरुष शुद्ध चैतन्य रूप आत्मा है जो नित्य और विकारी है। वह चेतन होता है, परंतु साथ ही निष्क्रिय और अपरिणामी भी, अर्थात उसमें कोई क्रिया या विकार नहीं आता। इन्हीं चेतन पुरुषों के संपर्क से जड़ प्रकृति संसार की सृष्टि करती है। सांख्य का कहना है कि पुरुष की सन्निधि या सामिप्य मात्र से प्रकृति में क्रिया प्रवर्तन हो जाता है, परंतु पुरुष स्वयं निर्विकार रहता है। इसी तरह पुरुष चैतन्य का प्रतिबिंब ही जड़ बुद्धि पर पड़ने से उसमें ज्ञानादिक क्रियाओं का आविर्भाव हो जाता है, परंतु पुरुष स्वयं निर्विकार रहता है। इसी तरह पुरुष अर्थात चैतन्य का प्रतिबिंब ही जड़ बुद्धि पर पड़ने पर उसमें ज्ञानादिक क्रियाओं का आविर्भाव हो जाता है, परंतु पुरुष ही केवल सन्निधि मात्र से प्रकृति में क्यों विकार होने लगते हैं और पुरुष में क्यों नहीं विकार होता, इसका स्पष्ट समाधान नहीं मिलता। फिर यह प्रश्न उठता है कि चैतन्य निराकार होता है, फिर निराकार चैतन्य का प्रतिबिंब साकार बुद्धि पर कैसे पड़ता है। बुद्धि तो जड़ तत्व है, फिर उसमें ज्ञान का उदय कैसे हो सकता है। इन बातों को समझने के लिए सांख्य में जो दृष्टांत दिए गए हैं उनसे पूरा समाधान नहीं होता। फिर भी एक शंका यह भी है कि जीवों के गुण क्रिया जन्म मरण और आकृति प्रकृति के भेद से पुरुषों का अनेकत्व सिद्ध किया जाता है, परंतु ये सब तो शरीर के धर्म है, आत्मा के नहीं। जो विभेद देखने में आते हैं वे प्रकृति के हैं, शुद्ध चैतन्य स्वरूप पुरुष के नहीं। फिर उनके बल पर बहुपुरुषवाद की स्थापना कैसे की जा सकती है। व्यवहारिक जगत में हम जिन्हें भिन्न भिन्न पुरुष समझते हैं वे भिन्न भिन्न अहंकार मात्र कहे जा सकते हैं। विवेचनात्मक दृष्टि से सांख्य दर्शन में ऐसे कई शंका स्थल हैं जिनका ठोस समाधान नहीं मिलता। फिर भी सांख्य दर्शन का महत्व कम नहीं समझना चाहिए। आत्मोन्नति और मुक्ति के साधन रूप में इसका बहुत ही मूल्य है। दुखों से निवृत्ति पाने के लिए यह दर्शन उतना ही मूल्यवान है जितना कोई भी आस्तिक दर्शन। यह साधक को जीवन के चरम लक्ष्य अर्थात मोक्ष का मार्ग दिखलाता है। यहाँ सांख्य दर्शन समाप्त होता है।